તારીખ 8/8/1990 પૂજ્ય બેનશ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 375 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું સોનગઢમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 385
માતાજી કા नजर आती है विश्व में सांप्रत इस काल में ऐसे व्यक्ति
ऐसे निर्दल व्यक्ति दूसरी देखने में
કારણ
751 नंबर के पत्र में इसको कारण देखकर नियमबद्ध कारण देखकर कि जिस कारण के साथ कार्य प्रतिबद्ध है ऐसा कारण देखकर उसको एक न्याय से संकित मान दिया है। संकित के तीन द्वेष हैं इस पत्र में। प्रत्यक्ष सत्पुरुष की पहचान होकर के आप्त पुरुष कहकर के वहां आप्त शब्द लगाया है पत्र में। उसकी आज्ञा रुचि रूप सम्यक उसका विकल्प मेरी आज्ञा उसका संकेत मेरी आज्ञा आज्ञा तो आज्ञा है लेकिन यहां तक ऐसा आप्त पुरुष की आज्ञा रूप रुचि उसको संकेत कहा है। दूसरा कहा है ये पहचान को संकेत कहा है कि जो स्पष्ट पूर्ण से प्रकृति रूप है वहां ऐसे शब्द प्रयोग किए। स्पष्ट अनुमान से प्रकृति ये पहचान का विषय जो समय सार के परिशिष्ट में भगवान उमरचंद आचार्य ने निरूपित किया ज्ञान मात्र से स्वसंवेदन प्रसिद्धत्वात् ज्ञान मात्र को मैंने आत्मा को स्वसंवेदन से प्रसिद्धि है। इसका यही अनुवाद है स्पष्ट अनुभवान से प्रतीति प्रतीति मैंने विश्वास। तीसरा दिया परमार्थ संकेत। परमार्थ संकेत मैंने न्यूमेरिकल स्वानुभूति के काल में आत्म प्रतीति अनुभव पूर्वक होती है उसी को कहा परमार्थ संबंध दर्शन। स्पष्टीकरण कर दिया कि एक दूसरे के कारण होने से हमें उसको भी संकेत कहते हैं और ऐसा कहना करने योग्य है सत्कार करने योग्य है स्वीकार करने योग्य है आदर करने योग्य है इतने शब्द डाले। ये दूसरा नंबर का जो संकेत है इस विषय में माता पिता जी बोल सकता है बहुत सुंदर बात है। इसमें चैतन्य तत्व को पहचानना चाहिए धार्मिक धर्म के क्षेत्र में आए धार्मिक कुछ न कुछ क्रियाएं भी करते हैं हमारा विचार करें तो हम क्या क्या करते हैं दूरदर्शन करते हैं गुरेंद्र का दर्शन करते हैं सुबह स्मरण करते हैं पुष्पा निष्ठी स्वाध्याय करते हैं पूजा करते हैं भक्ति करते हैं जयदान आदि हमारे शक्ति अनुसार सबको उपयोगी करते हैं। सभी प्रवृत्ति होने के बावजूद भी कर्तव्य क्या चीज है इस बात पर यहां ध्यान खींचा है कि कर्तव्य ये है कि हमें हमारे चैतन्य तत्व की पहचान करनी चाहिए। इस सब करते हुए भी अगर हम हमारे चैतन्य तत्व की पहचान नहीं करते तो ये करने में सब अनंत बार कर चुके हैं ऐसी परिस्थिति में ये सब चीज हो जाएगी। क्या अनंत काल में हम शास्त्र स्वाध्याय नहीं किया अनंत काल में हमने प्रयत्न नहीं किया, प्रार्थना किया भक्ति नहीं की, क्या दया दान किया, प्रार्थ नहीं किया, सत्यता आदि नहीं किया, क्या सुनो आप उठियो सब बात दे विषय है कि चैतन्य तत्व की पहचान करना, ये बात तो लक्ष्य में रहनी चाहिए कि हमें हमारे स्वरूप की पहचान हुए बिना बौद्ध भ्रमण का अभाव रूप जिस समय कृष्ण और स्वामी भवन तक पहुंचना चाहते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसी कारण से इस विषय पर इस रचनामृत ने बहुत वजन दिया है। इसी कारण से चैतन्य को पहचानने का अभ्यास करना, अभ्यास शब्द है प्रयत्न के अर्थ में, प्रयास के अर्थ में। चैतन्य को पहचानने का अभ्यास करना मैंने प्रयत्न करना, प्रयत्न के जगह अभ्यास शब्द का प्रयोग इसलिए है कि अभ्यास मैंने बार बार प्रयत्न करना, ऐसा अभिप्राय है। कभी करें कभी नहीं करें, आज किया हम कुछ पहचान करने का प्रयास, फिर कुछ महीनाओं के बाद करें, कुछ दिनों के बाद करें, ऐसा नहीं। क्षण क्षण हो सके अच्छी बात है, वरना प्रसंग प्रसंग तो करना ही चाहिए। प्रसंग मैंने उदय सभी उदय में हमारा कोई ख्याल रहना चाहिए कि हमें हमारा स्वरूप को पहचान करना है। कैसे पहचान करना है इसका जो कार्य पद्धति है उनके नीचे मुझे माता जी को वचनामृत से ही विचार करेंगे। लेकिन यहां इस सिद्धांत को स्थापित किया है कि पहचान कुछ पहचान करने के अभ्यास से पहचान होता है, यानी बार बार पहचान करने का प्रयास करने से पहचान होती है, इसलिए पहचानने का अभ्यास करना है। और ऐसा प्रयत्न में ऐसा अभ्यास में भेद ज्ञान का अभ्यास करना, ऐसा कहा। भेद ज्ञान का विचार करना, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं कहा कि भेद ज्ञान का विचार करना, भेद ज्ञान का अभ्यास करना, ऐसा कहा। दोनों में अंतर है। शरीर और आत्मा जुदा है ऐसा विचार करते हैं, शरीर और आत्मा जुदा है, आत्मा और ज्ञान स्वरूप है और राजा जी विभाव भाव जुड़े हैं, ऐसा भी हम विचार करते हैं। लेकिन अभ्यास करना, प्रयत्न करना, ये विचार के साथ साथ विचार से आगे की एक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को यहां अपने आप अभ्यास कहते हैं। विचार की भूमिका में भी यह अभ्यास होता है, फिर भी अकेला विचार हुए और अभ्यास नहीं हुए ऐसा हो सकता है, ऐसा करीब करीब होता भी है। इसलिए कहते हैं कि विचार करना ऐसी बात नहीं है, अभ्यास करना ऐसी बात है, प्रयत्न करना ऐसी बात है। मार्ग ही पुरुषार्थ प्रधान है, यहाँ से ये बात खुलती है, यहाँ से ये बात स्पष्ट होती है कि यह मार्ग ही पुरुषार्थ प्रधान है। यहाँ से लेकर के वेद ज्ञान का पुरुषार्थ से लेकर ये आखिर तक जहां मोक्ष मार्ग का अंतिम चरण हो, चरण मैंने आचरण, वहां तक पुरुषार्थ प्रधान मार्ग है। इसलिए कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन जितने को भी होता है उनके विकास की परिस्थिति पुरुषार्थ के दौर से पुरुषार्थ के दौरान ही आगे बढ़ती है। जितना पुरुषार्थ तीव्र होता है उतना ही इसका फलस्वरूप जो मोक्ष है वो नजदीक होता है, निकट होता है। तो जितना पुरुषार्थ मंद है उतनी देर लगती है। इसलिए अभ्यास में पुरुषार्थ प्रयास ये बात यहां से शुरू से ही चालू होती है। वेद ज्ञान का अभ्यास करना ऐसे कहते हैं। अभ्यास करना मतलब ये है कि वेद ज्ञान का विचार हमें आता है साथ ही साथ इसका प्रयोग भी चले तो प्रयोग पुरुषार्थ के बिना नहीं हो सकता, प्रयास के बिना प्रयोग नहीं हो सकता, प्रयोग और पुरुषार्थ का बिना भावी रहता है। गुरुदेव के रचनामृत में 304 नंबर का रचनामृत है परमाणु सार, इसलिए बात आई है। मनुष्य जीव को प्रयोग करना चाहिए और प्रयोग का पुरुषार्थ करना चाहिए। सन्नी पंचेंद्रिय होने से मनुष्य का विचार तो चलते ही रहेगा अपनी रुचि के अनुकूल। जिस जीव को जैसी रुचि होती है उसको उस प्रकार की विचारधारा सहज सहज चलती है। तो विचार को चलेगा उन्होंने निर्णय किया बुद्धि से, बुद्धि से इतना निर्णय किया कि धर्म करने से सुख है या हमारा भव भ्रमण का नाश हो सकता है और धर्म को करने में तत्वज्ञान ही इसका साधन है। हम तत्वज्ञान के बाह्य साधन जुटाएंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, सुनेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, सब कुछ करेंगे। इसमें भी मानसिक उपलब्धि होने से विचार करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतना निर्णय के बाद इस लाइन के विचार चालू हो जाएगा, चालू होता रहेगा। लेकिन विचार कर करके क्या करेंगे, जैसे कि सुगानी जी ने कहा प्रयत्न एक ऐसी चीज है कि इसमें कुछ समीपता आती है। जिस स्वभाव में बेहद शांति भरी है वो स्वभाव अनंत शांति का एक निधि है, उसकी कोई समीपता तो आती है तो पुरुषार्थ से आती है। इसलिए शुरू से ही सत्पुरुष के वचन पुरुषार्थ प्रेरक ही रहा है, रहते हैं। पुरुषार्थ नहीं हो ऐसी बात कुछ पुरुष के वचन में नहीं हो सकती। तो ये पुरुषार्थ से ही कुछ समीपता आती है या कुछ प्राप्ति आगे जाकर के होती है, स्वरूप की उपलब्धि, ये पुरुषार्थ का एक फल है। इसलिए वेद ज्ञान का पुरुषार्थ करना ऐसा कहने में ही आया है। वेद ज्ञान का पुरुषार्थ पहचान करने के लिए हमें करना है ये बात। विचार तो करेंगे नहीं, लेकिन विचार से आगे एक कदम और भी हमें चलना है कि जिसके फल में हमें सुनने दर्शन और स्नान मोदक प्राप्त हुए उपलब्धि हो गए। वेद ज्ञान का अभ्यास करना यही कर्तव्य है हमारी मनुष्य भूमिका का। ये कर्तव्य शब्द ज्ञान लगाया है कि यही करने योग्य है। ये हमारे हमको ये यहां से उपदेश मिलता है, ये देशना मिली है, हमारे कर्तव्य को समझाया है कि तुम्हें क्या करना है। एक मुमुक्षु की भूमिका में आए हुए किसी भी जीव को यही कर्तव्य है ऐसा कहा। वह अभ्यास करते करते वेद ज्ञान का अभ्यास, वह मैंने ऐसे वेद ज्ञान का अभ्यास करते करते आत्मा की आवादी से भिन्नता भाषित हो तो आत्मा का स्वरूप प्राप्त होगा। इसलिए यहां ये विषय और स्पष्ट होता है इस वचन से कि वेद ज्ञान का बार बार अभ्यास करेंगे तो ऐसे अभ्यास करते करते आत्मा की राधारी से भिन्नता हासिल हो। तो किस स्टेज में बात आई कि संसार के जीव को राग को सहज रूप से चलता ही रत रहता है और ज्ञान भी परिणमित होता ही रहता है। एक जगह स्वभाव है, एक जगह विभाव है, इसलिए ज्ञान लक्षण से लक्षित होता है। ऐसा परिशिष्ट में चर्चा चली समय सार के। तो राजावी से भिन्नता होती है और कोई बात नहीं है। देखिए वो कर्म की बात नहीं हुई, कर्म की बात नहीं, वैसे कर्म तो दिखने में भी नहीं आता छदमस्त जी को। राजावी से भिन्नता वो भाषित हो, राजावी से भिन्नता विचार में तो आती है लेकिन भाषित होना और विचार में आना वो बात बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुड़ी है। विचार में तो गुरुदेव की कृपा से हमने इतनी बात घूटी है, बार बार सुनी है, बार बार पढ़ी है, ठीक है। देश से भी आत्मा भिन्न है, राजा जी से भी आत्मा भिन्न है, बहुत आसानी से इस बात को हम सम्मत करते हैं आज। ये गुरुदेव की कृपा है, संप्रदाय में तो इतने सम्मत करने तक भी लोगों की मानसिक परिस्थिति नहीं है, लेकिन हमें इसको संप्रदाय से लेना देना नहीं है। ये तो हमारा विचार करना है कि जो हम ये बात आसानी से विचारते हैं, सम्मत करते हैं, तो हमको भाषित क्यों नहीं होती। तो विचार में हमें कोई दखल नहीं होती, निषेध नहीं आता कि राग तो आत्मा करता है, पर जब राग आत्मा करता है तो रागानी से भिन्न कैसे। ऐसा हमें उनको विचार नहीं आता है, ऐसा विरोध नहीं उठता है, नकार नहीं आता है, तर्क नहीं उठता है। इस बात को हमने गुरुदेव की कृपा से सम्मत करी तो बात तो ठीक है कि राग एक रोग है जीव का, स्वभाव नहीं है, इसलिए भिन्न है, न्याय से आगम से गुरुदेव के वचन से तर्क से अनुमान से युक्ति से ये मात विचार से सम्मत होती है किंतु भाषित नहीं होती है ऐसा क्या राग हो रहा है और ज्ञान से आत्मा की भी उपस्थिति है जानने वाला ऐसा आत्मा की उपस्थिति है मौजूदगी है तो रागादि से हमें भिन्नता लगती क्यों नहीं है भाषित होना मैंने लगना लगती क्यों नहीं है भाषित क्यों नहीं होती है ये एक स्थल है कि जहां उसकी गहराई में जाना हमारे लिए आवश्यक इस स्थल की गहराई में हमें जाना चाहिए वरना तो ऐसा विचार हमने कई बार कर लिया है और कई साल गुजर गए इस विचार को सम्मत करने के बाद भी लेकिन हमें जो चाहिए या हमें पहुंचना है वहां हम पहुंचे नहीं इसलिए क्योंकि माता जी कहते हैं कि आत्मा की रागादि से भिन्नता भाषित हो तो आत्मा का स्वरूप प्राप्त हो जाए मैंने अनुभव हो जाए प्राप्त होना मैंने अनुभव हुए उसको प्राप्ति कहते हैं है तो सही लेकिन अनुभव नहीं है वहां तक प्राप्ति नहीं कही जाती और अनुभव में ही प्राप्ति कही जाती है इसलिए स्वरूप प्राप्ति के लिए या स्वानुभव के लिए रागादि से भिन्नता भाषित हो तो अनुभव होता है भिन्नता भाषित न हो तो विचार से सम्मत करने के बाद एक सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय फिर आगे जाके टिकने वाली नहीं है किसी को भवंत भाव के अंत तक टिकती है भगवान करने के असंग तत्व की दृष्टि नहीं होने से उपलब्धि नहीं होने से तुम या पाप के फलस्वरूप किसी भी गति में जाता है वहां फिर इस विचार की भी परिस्थिति नहीं रहती देव लोक में जाए तो वहां भगादि में लपेट हो जाता है और दूसरी गति में जाता है तो वहां तो बहुत परिस्थिति खराब है तो इसीलिए ये स्थिति पूरी हो गई इसके पहले पहले ये पुरुषार्थ की प्रेरणा है कि हमारे आयु अनिश्चित है चाहे शरीर कितना भी अच्छा दिखे तंदुरुस्त दिखे फिर भी इसका विश्वास करने योग्य तो है ही नहीं हम तो रोज सुनते हैं ये बात तो रोज सुनने में आती है लेकिन उसका कुछ लगना चाहिए तो तेजी आ सकती है कुछ लगे नहीं सुनने के बाद तो प्रयास में तेजी नहीं आती प्रयत्न का उपाय नहीं होता इसलिए कहते हैं कि अभ्यास करते करते ही एक इसकी विधि है प्रयत्न का अभ्यास प्रयोग का अभ्यास चालू रहे तो भिन्नता भाषित हो गई भिन्नता भाषित हो गई तो स्वरूप की प्राप्ति होगी ये तो सीधी सीधी एक सीढ़ी के पीछे दूसरी सीढ़ी है ऐसी बात बताती है आत्मा चैतन्य तत्व है ज्ञान स्वरूप है उसे पहचानना चाहिए फिर से कहते हैं कि प्रस्तुत विषय ये चल रहा है जो भी आगे बात कही इसमें जो विषय चल रहा है वो चल रहा है कि आत्मा जो चैतन्य तत्व है ज्ञान मात्र जिसको कहकर के समय साल में पुकारा आचार्य भगवंत ने चैतन्य तत्व प्रयोग करना है इस बात को और छानबीन के स्पष्ट करते हैं इस रचना में जीवों को ऐसा मन है कि पर कर सकता हूं, ये तो बात हमारे मन में इसलिए आसान है कि हमारे चलते हुए परिणाम का हम अवलोकन करें, चलते हुए परिणाम का अनुभव को कि हम तलाश करें, तपास करें, तो पता चल जाता है कि ये वचनामृत में जो बात है वो हमारे अनुभव की कही हुई है। कि जीव को ऐसा भ्रम है कि मैं परद्रव्य परद्रव्य का कर सकता हूं, जैसे नाशा चलती है ऐसे तो स्वयं ही चलती है, लेकिन भ्रम से ऐसा लगे कि मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं इतना ही नहीं, मैं अच्छा बोलता हूं, मैं बोलता हूं, ऐसा भ्रम होने से मैं अच्छा बोलता हूं कि आए बिना रहने वाला जो अच्छा बोलता हूं ऐसा आया तो दूसरों से अच्छा मेरे कर्तृत्व के साथ इस ब्रह्म के साथ ब्रह्म तो ब्रह्म होता है, सफाई चालू हो जाती है अनंतानुबंधी सिद्ध मान कर संपूर्ण करना ही एक अभिमान है, और फिर इस अभिमान में अच्छाई हुई तो और तीव्र रस आया, और दूसरों का इसमें लक्ष्य हुआ तो और तीव्रता आ गई। ये तो हमारा हमेशा अनुभव हमको दिखलाते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं कि जीव को ऐसा भ्रम हो कामना करना यही एक अभिमान है, पर फिर इस अभिमान में अच्छाई हुई तो और तीव्र रस आया, और दूसरों का इसमें लक्ष्य हुआ तो और तीव्रता आ गई। ये तो हमारा हमेशा अनुभव है, उसको दिखलाते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं कि जीव को ऐसा भ्रम है कि पर द्रव्य का मैं कर सकता हूं, पर द्रव्य का अनेक कार्य शाम तक सोने को जाते हैं, वहां तक छोटी मोटी अनेक शरीर की और दूसरे पदार्थों के व्यवहार की जो भी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मैं नहीं कर सकता हूं ऐसा कब आता है, करता हूं ऐसा विकल्प भी नहीं करना पड़ता है, ऐसी परिणति हो गई है। मेरी विकल्प परिणति हो गई है कि मैं ये सब कुछ करता हूं, मैं करता हूं इसकी क्षमता में इस वक्त नहीं जाती। हाँ, स्वाध्याय करते वक्त बराबर विचार करते हैं कि आत्मा शरीर का नहीं कर सकता, कर्म का नहीं कर सकता, नौ कर्म का नहीं कर सकता, भाव कर्म का नहीं कर सकता, समय सब ना देखता, कई कर्म भाव कर्म नौ कर्म से आत्मा भिन्न है। पहले प्रश्न आया नम समय सारा यह सारा यह मैं पहले निकाला, दल कर्म भाव कर्म नौ कर्म से भिन्न है। स्वाध्याय करते वक्त विचार अवश्य करते हैं, लेकिन परिणाम करते वक्त शंका भी उठती है क्या, कि मैं कर सकता हूं क्या या मैं नहीं कर सकता। तो भ्रम के कारण स्वयं परिणति हो गई है कि मैं परद्रव्यता कर सकता हूं और करता हूं। कुछ लेना देख लेना अपने आप को, ये बात तो एक व्यक्तिगत हमें तो हमारी देख ली, दूसरों की नहीं, अपने आप को देखना पड़ेगा कि क्या स्वाध्याय करते वक्त हमें शंका पड़ता है ये बोलते वक्त हमको शंका पड़ता है कि मैं बोल सकता नहीं हूं क्या, या सुनता हूं तो ये मैं सुनने का कार्य मैंने किया, बराबर अपने कानों कान से सुना है कि ये शब्द का प्रयोग होगा, कान का सहारा ले लेते आधार ले लेते, कुछ भी किया मैं बैठा हूं देखे पन्ना फिरता फिरता नहीं मैं फिराता हूं मैं चाहता है मैं तो फिरता हूं लेकिन मैंने फिराया मैं बैठा मैंने देखा परग्रह को हम स्वयं गुरु परग्रह को मैं कर सकता हूं ये अनुभव की चीज हो गई है और ये अनुभव में बहुत बड़ी भूल है कि जिस भूल का हर परिभ्रमण है अनंत परिभ्रमण है भूल मामूली है ऐसे गौण करने लायक ऐसी भूल ये नहीं है विख्यात रूपी भूल है भ्रम की ये भूल है इसमें सारे परमात्मा चैतन्य तत्व निज आत्मा उसका अनादर है अपना स्वयं साक्षात सिद्ध पद का इसमें अनादर है अस्वीकार है निषेध है नकार है कि ये नहीं चाहिए मुझे तो ये क्रिया चाहिए जिसको मैं कर सकता हूं इसके फल में परिभ्रमण है फिर यहां कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूं परंतु स्वयं पर पदार्थ में कुछ ही नहीं कर सकता पर पदार्थ के एक भी क्रिया मैं नहीं कर सकता इसका हमें प्रयोग करना है मात्र विचार करना है यह प्रकरण यहां नहीं है अभ्यास शब्द दो जगह जो प्रयोग किया है माता जी ने इससे यहां मात्र विचार का विषय नहीं है ये प्रयोग का विषय है ये बात सही है तो मेरे परंतु प्रति स्वयं पर पदार्थ को मैं कुछ नहीं कर सकता इस बात के अनुभव में की गहराई में हमें जाना है पर पदार्थ शरीर आदि आत्मा से भिन्न है ये बात बोलने में और विचार करने में भले ही आसान हो गई है किंतु अनुभव में पसीना उतर जाए ऐसी बात है बोलने में या विचारने में विकल्प में भले ही आसान लगते हो ऐसे में माता जी ने ऐसी बात क्या किया कि प्रभु का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ये बात तो हमको तो बहुत आसान हो गई है अपने लोग कोई बोल जाते हैं ये तो उनको कंठस्थ हो गई है बात ये तो ऐसा बोल रही हूं ऐसा भी बोल देगा कि ये तो वास्तु में ग्रंथ में ऐसा भी बोल देते हैं तो वहां तो भक्ति चली जाती है पहले नहीं हो जाता है लेकिन स्थूल हो या सूक्ष्म हो जैसी है वैसी है ये तो सापेक्ष बात है किसी भी छोटे मोटे विशेषण लगावे तो उसमें तो सापेक्षता अवश्य होती है लेकिन है ऐसी तो है अब तो सिद्ध कर तो धन्यवाद है नमस्कार है वंदन है अगर सिद्ध नहीं किया तो बोलने से तो क्या है विचार करने से मैं तो क्या रखा है ये तो कोई चीज ही नहीं भिन्न होने में जो पुरुषार्थ है उसमें पसीना आता है इस पुरुषार्थ में पसीना आता है इसलिए वो जी लिखते हैं 26 के वर्ष में एक पत्र में ऐसा उदय चला है ऐसा उदय चला है हमको कि धर पे मस्तक रखना मुश्किल हो गया हो जाता है कभी कभी भले ही हमारे आत्मा से उचित नहीं होते हैं पुरुषार्थ हमारा बराबर चलता है और विस्मरण स्वरूप का कभी होता नहीं कि मैं क्या एक हूं, मैं आत्मा हूं, इसका विस्मरण नहीं होता। किंतु कभी कभी तो प्रसविद आ जाता है, ऐसा शब्द लिखा है, कभी कभी तो प्रसविद आ जाता है, मतलब प्रसन्न आ जाता है। मतलब तो ऐसे इस संसार के चित्र विचित्र उदय में स्वरूप में स्थिर रहना अच्युत रूप से चुप नहीं हो रहा, ये बहुत कठिन लगता है, बहुत पुरुषार्थमूलक परिस्थिति हो गई है। अभी तो इससे कुछ छुटकारा हो जाए तो अच्छा है, उदय से कोई निवृत्ति आ जाए, प्रवृत्ति इतनी नहीं रहे तो अच्छा है। बहुत कंटाले हुए हैं अपने 26 साल की उम्र में, जो आजकल तो लड़का देखे 26 साल का हो गया, ऐसे पुषात के बहुत जबरदस्त स्थिति थी प्रेम की। तो यहां कहते हैं कि पर पदार्थ जो कुछ नहीं कर सकता, प्रसंग प्रसंग उदय उदय पर इसका पुरुषार्थ और प्रयोग चले तो पता चले कि हमारा प्रयोग चलता है तो कैसा चलता है, या चलने का विचार चलता है लेकिन प्रयोग नहीं चलता है। वो भाग परिस्थिति ये देखने में आती है, तो समझने में बात आती है कि प्रयोग करना चाहिए लेकिन प्रयोग चलता नहीं है, करीब करीब से ये परिस्थिति है। तो ये बात तो सूक्ष्म में समझने आए कि प्रयोग करना चाहिए लेकिन प्रयोग होना, इसके पीछे भावना का बल हुए बिना प्रयोग चल ही नहीं सकता। माता जी के मोक्षों की भूमिका की नींद की कुल बात है तो ये है कि कोई अपूर्व भावना होए, चैतन्य की प्राप्ति की कोई अपूर्व भावना होए तो प्रयोग चले, तो फिर ज्ञान का प्रयास चले। वरना भोजन करना चाहिए, ये बात करना चाहिए, ऐसे विकल्प तक रह जाएगी, प्रयोग चलेगा ही नहीं, शुरू होगा ही नहीं, ये अपूर्व देन है। मुझे माता जी की एक अपूर्व देन भावना में तो आया है, सुनने को आता है, सुनने को बैठता है, और सब निवृत्ति लेकर के, ये तो निवृत्ति क्षेत्र है, यहाँ तो कोई प्रवृत्ति है नहीं, संत जो भी सारा दिन चलता है, लेकिन तू तो इसलिए भावना में आ गया है ऐसा मत समझ लेना। भावना की उपस्थिति है, भावना चालू हुई है और रही है, इसका कोई लक्षण है क्या? तो इसका लक्षण है प्रयोग चालू हुआ कि नहीं हुआ। यह प्रयोग चालू नहीं हुआ हमें समझना चाहिए कि हमें भावना ही अभी तक नहीं हुई, आगे के तो बात को विचार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हमें भावना नहीं और हम अपेक्षा रखे कि हमको सम्यक दर्शन हो जाए तो अच्छा है, समझ आपको इतनी देर पड़ा, बहुत बार पड़ा, सम्यक दर्शन पाने का आनंद ग्रंथ है आचार्य महाराज का, लेकिन भावना का तो हमारा ठिकाना नहीं है। और सम्यक दर्शन की हम आशा रखें, अभिलाषा रखें, तो हमें पता ही नहीं है कि हम कहां खड़े हैं, किस जगह खड़े हैं, ये परिस्थिति आ जाएगी तो ये बात चलती है, ये सब परिणाम के सापेक्ष चलती है। तो इस ग्रंथ के कोई मूल नियम की बात है तो यह है, और बहुत अपनी प्रतीति से और अपने विश्वास से, अप्रतिम विश्वास से ये बात कही 31 नंबर के बोर्ड में कि ये भावना कोई ऐसी चीज है के चौदह ब्रह्मांड को हिला देवे वो फिर सकता है, भावना का फल नहीं आ गया ऐसा तो बन ही नहीं सकता। मतलब ये है कि हमारी मुख्य प्रकृति ज्ञान प्रधान है, स्वाध्याय करना, सुनना, तत्व चरना आदि आदि। इस ज्ञान प्रधान प्रवृत्ति में भावना पूर्वक होवे तो कभी शुष्कता नहीं आएगी, बिना भावना से शुष्कता आए बिना रहेगी नहीं। क्यों? शुष्कता रस के अभाव को सूचित करती है, तो भावना एक रस से भी देते के परिणाम है। तो जो रस से भीगी हुई परिणति है, परिणाम की श्रृंखला है, उसके साथ पुरुषार्थ का पैदा होना, पुरुषार्थ का उत्पन्न होना अनिवार्य है, और बिना भावना आगे चलने की कोई बात ही नहीं है। कितना भी बाह्य क्रिया कर करके हम मर जाए कुछ होने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ी देर हमें मिली है। यहां कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, जब पर पदार्थ की क्रिया का विषय चला तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो यहां से ये बात ली कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, स्वतंत्र में स्वयं परिणित हो ही रहा है, ऐसा एक अनुभव करने का प्रयास होना चाहिए के लिए स्वतंत्र हो रहा है। कुदरत जैसे अपना काम कर ही रही है, ये बारिश थोड़ी भी आ रही है अंकुर जमीन में से पैदा हो जाते हैं, बिना बीज बोए कुदरती काम होता है कि नहीं? जैसे कुदरत तो काम कर ही रही है। परमाणु परमाणु मात्र स्वतंत्र है, प्रत्येक जीव के एक एक समय की पर्याय स्वतंत्र है। किसको हम करें, किसको फिरावे, क्या करें हम, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, इसलिए हमारा हस्तक्षेप किसी के किसी जीव और पुद्गल के परिणाम में हमारा हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता, हम कर ही नहीं सकते। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, और स्वयं मैंने अपना मैं तो स्वयं मैंने मैं तो आत्मा को बनाता है, आत्मा स्वयं तो बनाता है, मैं तो बनाता हूं, मैं तो विनायक हूं, सिवा जानना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो राजा जी एक न्याय से जीव के परिणाम होते हुए भी मैं तो ग्रायक हूं इसलिए नहीं कर सकता। यहां तक ये बात लेनी है पर पदार्थ से लेकर के। पर पदार्थ की बात तो आसानी से समझ में आती है, लेकिन अनुभव करने में तो यहां भी सूक्ष्मता है। तो राग से दीन होना, ये तो राग और ज्ञान की जो संधि है जिसको सांध कही, समय सार 294 था मोक्ष अधिकार, और इस ग्रंथ में 197 नंबर का बोल है। राग और ज्ञान जुदा है, यहां से बात चली है 197। चला है उपयोग को बराबर सूक्ष्म करके शुभाशुभ भाव और ज्ञान की अंतर संधि में पटकना, दोनों की संधि में सावधान होकर उसका प्रहार करना। अब बात यह है कि संधि दिखे तब तो प्रहार करे ना, पर संधि नहीं दिखती है तो प्रहार कहां करे। अंतर में विचार करें, देखने को जावे तो पता चले कि जहां तक हमारे परिणाम ज्ञाकार ज्ञान में यानी विशेष ज्ञानाकारों में आविर्भूत हुए हैं, तन्मय हो रहे हैं, वहां तक ज्ञान और राग की संधि दिखने में नहीं आई। ज्ञान और राग की संधि जब दिखने में नहीं आती है तो प्रहार करने तो आगे की बात कह दी। किस हालत में ये संधि दिखने में आती है, देखने को हम समर्थ हो सकते हैं, ये तो पहला विचार करना पड़ता है। हम कहते हैं कि हम तो विनायक है, स्वयं विनायक है, ज्ञान मात्र में हूं, इस भाव में अगर हम ज्ञान के वेदक तक स्वसंवेदनात् प्रसिद्धि है ऐसा लिया, ज्ञान में रहे ज्ञान वेदन तक, ज्ञान सामान्य तक पहुंच सकते हैं, तो राग की संधि और निसंधि के विषय में कुछ विषय नजर आता है। जब ये विषय नजर नहीं आता है तो वेदना आगे होकर के भिन्न हो जाना, तो शुद्धोपयोग होना, ये बात तो आगे की बहुत तीव्र पुरुषार्थ की रही। अब तो जहां पुरुषार्थ चालू है भेद ज्ञान का, वहां राग और ज्ञान की संधि देखने में आवे तो प्रज्ञाक्षिणी का कार्य होए, देखने में नहीं आवे तो प्रज्ञाक्षिणी भी नहीं है, मारने का तो सवाल ही नहीं है, ये परिस्थिति रही है। कहते हैं कि मैं स्वयं जाता हूं, ज्ञानी हूं, पर पदार्थ से पर पदार्थ में उसका ज्ञान जाता नहीं है और पर में से कुछ आता नहीं है, ये प्रयोग में व्याप्त व्यापकता का एक स्टेज आता है, इसकी चर्चा की माता जी ने क्या कहा कि पर पदार्थ में उसका ज्ञान तत्व का ज्ञान जाता नहीं, न पर पदार्थ में से कुछ आता भी है, आना जाना कुछ होता ही नहीं, जैसे ये आवाज हमारे में नहीं आती, आवाज आत्मा में नहीं आती, ज्ञान में नहीं आती, आवाज और ज्ञान भिन्न रहता है। हमारे में आवाज आ गई और हमको ये एकाग्रता हमारी टूट गई, जैसे भी बारिश चालू हो जाती है तो बारिश का आवाज हो जाता है बरसात का, लेकिन हमको ये प्रतिकूलता सुनने में आ गई, तो क्या ये आवाज आत्मा में आई या आवाज आवाज में रही है? व्याप्त व्यापकता का अभाव है, कर्ता कर्म प्रणा भी व्याप्त व्यापकता के साथ अविनाभावी है, व्याप्त व्यापकता महसूस होने के कर्ता प्रणा होने हो ही जाएगा, रोक सके ये सवाल पैदा नहीं होगा। व्याप्त व्यापकता नहीं है, किसी भी पर पदार्थ की क्रिया भले ही आत्मा के निमित्त के परिणाम के निमित्त से, राग के निमित्त से या ज्ञान के निमित्त से हो, किंतु व्याप्त व्यापकता का अभाव है। ये व्याप्त व्यापकता अपने ज्ञान की व्यापकता तक सीमित है, अपनी व्याप्त व्यापकता अपने ज्ञान से सीमित होती है, इसकी सीमा राग में भी नहीं, तो राग के विषय पदार्थ में तो सवाल पैदा नहीं होता। इस व्याप्त व्यापकता को हम देखें, इसका हमें अवलोकन हो अंदर में ज्ञान में,
तो हमें पर पदार्थ से हमारे जाते व्यापकता नहीं है इसका पता चलेगा, वरना तो न्याय से शास्त्र से युक्ति से सहन लेवे और संतोष कर लेवे तो ये संतुष्ट होने की परिस्थिति नहीं है, इसमें संतोष होने लायक नहीं है। एक और भ्रम पैदा हो जाएगा तो मुझे समझ में आता है, मैं समझता हूं, पहले नहीं समझता था अब समझता हूं। पर ऐसा होता भी है कि पहले तो समझ में नहीं भी आता था, पीछे समझ में आया भी है, लेकिन ये समझ में आया है फिर भी व्यापकता का भास नहीं होता है, भाषित नहीं होती है, हमारी व्यापकता हमारे ज्ञान में समाप्त हो जाती है, ऐसा भाषित नहीं होता है वहां तक। ये समझ समझ कुछ अटल रह गई है, मैंने एक परलक्षी ज्ञान का एक विषय रह गया है, व्यापकता में आवे तो एक से लक्षी ज्ञान का एक विषय होता है, यहां से ज्ञान की एक प्रकार की परिस्थिति पलटा खाती है। देखिए बात बहुत सीधी सादी है लेकिन गहराई बहुत है इसमें, कि पर पदार्थ में ज्ञान जाता नहीं और पर में से कुछ आता नहीं। जैसे कोई चीज हमने गंवा दी, कोई जेवर गुम हो गया, पैसे हमारे गुम हो गए या कुछ भी हो गया, दुख हो जाता है कि हमारी चीज चली गई, कुछ चला गए, ज्ञान में से क्या गया? तो ज्ञान में से कुछ गया नहीं, ये विचार कामयाब कब होगा, ये परिणाम कामयाब कब होगा? तो व्यापकता को ग्रहण करेंगे तब। व्यापकता में अस्तित्व का ग्रहण है पर विचार में नहीं है, ये परलक्ष विचार में संभवित है हम सम्मत कर ले रहे, तो पहले से कुछ आता नहीं, पर में हमारा ज्ञान जाता नहीं, लेकिन ये विचार बेकार जाता है, ये हमारा अनुभव बोलता है कि ये विचार बेकार जाता है, इसका कोई फल नहीं है हमारे पास, तो उसको सही भाव में चरितार्थ करे तो हमें इसकी व्यापकता में जाना पड़ेगा, और इसका इस व्यापकता का हम अनुभव करें कि हमारे में से क्या गया। अगर हम हर्षित हो गए कुछ प्रसंग से तो हमारे में क्या आया, हमारे में ज्ञान में क्या आया, ज्ञान में से क्या गया, तलाश करो, कम से कम तलाश करो, उतने हद तक तो लाओ, ये हर्ष और शोक का रस मंद हुए बिना रहेगा नहीं, रस टूटेगा। ये जो पहचान का विषय यहां पर चला है, निर्णय का विषय है, पर निर्णय तब आएगा जब रस विभाव का ऐसे प्रयोग कर करके मंद कर होगा तब, ऐसे हरक शोक आदि जितने भी विभाव परिणाम में जो रस का मुद्दा है, ये रस का मुद्दा यही पात्रता का एक परिस्थिति है जो 19 नंबर के बोल में यहां लिया है, 144 गाथा में से जो चंद्रभा ने खींचा है, 30 नंबर का बोल कुछ बैंक के स्वामी साल प्रवचन भाग में से 30 नंबर का बोल खींचा है, जो अपने शताब्दी अंक में जो प्रवचन डाला है उसमें ये है सारा का सारा। तो मेरे बात गुरुदेव बोले हैं कि ऐसा निर्णय ही पात्रता है, तो पहचान को या निर्णय को या लक्ष्य हुआ को या भाव भाषण हुआ को, तो इसमें रसमंद होता है, और रसमंद कब होता है कि ऐसे प्रयोग की पद्धति के बिना कभी